आयुब अध्याय 22। अब एलीपस वक्ता की भूमिका निभाता है और वो भी उस पर वही दोष लगाता है कि वो दुष्ट है। वो उस पर अन्य बुरे आरोप भी लगाता है। अध्याय 22 पद 2 से लेकर 4 तक। क्या मनुष्य से परमेश्वर को लाभ पहुंच सकता है? जो बुद्धिमान है वो अपने ही लाभ का कारण होता है। क्या तेरे धर्मी होने से सर्वशक्तिमान सुख पा सकता है? तेरी चाल की खराई से क्या उसे कुछ लाभ हो सकता है? वो तो तुझे ढांढता है और तुझसे मुकदमा लड़ता है, तो क्या इस दशा में तेरी भक्ति हो सकती है? आयुब तो सोचता है तू धर्मी होकर सर्वशक्तिमान पर एहसान कर रहा है, तेरे धर्मी होने से उस पर क्या अंतर पड़ेगा? यदि तू अपने आप को निर्दोष कर रहा है तो उससे परमेश्वर को क्या लाभ? परंतु अध्याय 22 पद 5 से लेकर 9 तक। क्या तेरी बुराई बहुत नहीं? तेरे अधर्म के कामों का कुछ अंत नहीं? तूने तो अपने भाई का बंधक अकारण रख लिया है और नंगे के वस्त्र उतार लिए हैं। थके हुओं को तूने पानी न पिलाया और भूखे को रोटी देने से इनकार किया। जो बलवान था उसी को भूमि मिली और जिस पुरुष की प्रतिष्ठा हुई थी वो उसमें बस गया। तूने विधवाओं को छूचे हाथ लौटा दिया और अनाथों की बाहें तोड़ डाली गई। वो आयु पर आरोप लगा रहा था। आरोप सिद्ध तो नहीं हुए थे, वो अनुमान ही लगा रहा था। उसका कोई प्रमाण उसके पास नहीं था। आयुब अभी तो चुप था, परंतु आने वाले अध्यायों में वो इनका प्रति उत्तर देगा। रोचक बात यह है कि अतिथि सत्कार एक प्रकार की धार्मिकता मानी जाती है। यदि आप अपने अतिथि का सत्कार नहीं करते तो आप दुष्टों में गिने जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आप किसी को पीने के लिए पानी और खाने के लिए रोटी नहीं देते, गरीबों की, विधवाओं की, अनाथों आदि की सहायता नहीं करते, तो ये बहुत बड़ी दुष्टता मानी जाती है। मेरे विचार में आज के मनुष्य की एक त्रासदी ये है कि हम अपने आप में ही इतने अधिक व्यस्त हैं कि हमें अपने आसपास के लोगों की आवश्यकताओं का आभास भी नहीं होता है। मैं उन लोगों से बड़ा अप्रसन्न रहता हूं जो अपने सुख विलास और राग रंग में अति व्यय करते हैं और गरीबों को अनदेखा करते हैं। वे अपनी देखभाल और सौंदर्यकरण में अत्यधिक पैसा खर्च करते हैं, और यदि कोई अभागा मनुष्य उनके पास आए तो वे उससे क्रोधित होते हैं। निकल यहां से, कहीं और जाकर मांग। बाइबल के युग में ऐसा व्यवहार दुष्टता में गिना जाता था। मेरे विचार में तो आज भी ये बहुत बड़ी दुष्टता ही है। सुख भोग हमारी जीवन शैली नहीं है, जबकि मनुष्य दुखी है, भूखा है, आवश्यकता ग्रस्त है। हमें अपने आसपास के लोगों की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक होना है। इंग्लैंड में एक अभियान आरंभ किया गया है जिसके समर्थन में मैं नहीं हूं, क्योंकि मेरे विचार में वे मनुष्यों पर दबाव डालते हैं। उनका सिद्धांत है समाजवाद का जीवन जीना। उनके विचार अनुसार यदि आपके पास 10 लाख की कार है तो आप उसे बेचकर 2 लाख की कार खरीदकर उसे अपना काम चलाएं। 8 लाख रुपए आप गरीबों को दान कर दें। यदि आपका काम 1 लाख के फ्लैट से चल सकता है तो आप अपनी 1 करोड़ की कोठी बेचकर उस फ्लैट में अपना जीवन निर्वाह करें और बाकी पैसा गरीबों के लिए दान कर दें। मैं उनके साथ सहमत तो नहीं हूं, परंतु मैं ये अवश्य मानता हूं कि यदि परमेश्वर ने हमें आशीषें दी है तो हम अपने लिए सोना चांदी एकत्रित न करें, जबकि हमारे आसपास अनेक आवश्यकताग्रस्त लोग हैं जो भूखे और दुखी हैं। याकूब ने कहा, याकूब पांच अध्याय एक से चार पद। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्लाकर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वो काई तुम पर गवाही देगी और आग की नाई तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी मजदूरी तो तुमने धोखा देकर रख ली है, चिल्ला रही है। और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। यीशु ने कहा, मत्ती 19 अध्याय 24 पद, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट की सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। क्यों? क्योंकि धनी जन नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ जाते हैं और उनका प्राण दंड के लिए निर्धारित कर दिया जाता है। यदि परमेश्वर ने हमें आशीषें दी है तो हम उन आशीषों की आवश्यकताग्रस्त लोगों के लिए सदुपयोग करें। यदि हम जरूरतमंदों की ओर से आंखें बंद कर लेते हैं और अपने ऊपर ही व्यय करते हैं तो परमेश्वर निश्चय ही हमारा न्याय करेगा। वे आयु पर इस प्रकार का आरोप लगा रहे थे। वे वास्तव में संगीन दोषारोपण थे जिसमें आयुब को दुष्ट करार दिया जा रहा था। क्यों तूने इन बातों को किया है? इसलिए पद 10 में, अध्याय 22 पद 10 से लेकर 13 तक, इस कारण तेरे चारों ओर फंदे लगे हैं और अचानक डर के मारे तू घबरा रहा है। क्या तू अंधेरे को नहीं देखता और उस भाड़ को जिसमें तू डूब रहा है? क्या परमेश्वर स्वर्ग के ऊंचे स्थान में नहीं है? ऊंचे से ऊंचे तारों को देख कि वे कितने ऊंचे हैं। फिर तू कहता है कि परमेश्वर क्या जानता है? क्या वो घोर अंधकार की आड़ में होकर न्याय करेगा? वो आयुब पर झूठा दोष लगाकर कहता है, आयुब तू कहता है कि परमेश्वर तुम्हें कैसे देख सकता है जब आकाश बादलों से ढका हो? आयुब ने ऐसा नहीं कहा था। वो केवल उस पर झूठा दोष लगा रहा था कि तू कहता है। अध्याय 22 पद 14 से लेकर 22 तक, काली घटाओं से वो ऐसा छिपा रहता है कि वो कुछ नहीं देख सकता। वो तो आकाश मंडल ही के ऊपर चलता फिरता है। क्या तो उस पुराने रास्ते को पकड़े रहेगा जिस पर वे अनर्थ करने वाले चलते हैं? वे अपने समय से पहले उठा लिए गए और उनके घर की नींव नदी बहा ले गई। उन्होंने परमेश्वर से कहा था, हमसे दूर हो जा, और ये कि सर्वशक्तिमान हमारा क्या कर सकता है। तो भी उसने उनके घर अच्छे अच्छे पदार्थों से भर दिए, परंतु दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। धर्मी लोग देखकर आनंदित होते हैं और निर्दोष लोग उनकी हंसी करते हैं कि जो हमारे विरुद्ध उठे थे निस्संदेह मिट गए और उनका बड़ा धन आग का कौर हो गया है। उसमें मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। वो आयुब को परामर्श देता है, वो धार्मिकता का मार्ग चुने, परमेश्वर को खोजे और शांति पाए, परमेश्वर की आवाज सुने और उसका पालन करे। अध्याय 22 पद 24 से लेकर 27 तक, तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूली पर, वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा, और तू उससे प्रार्थना करेगा और वो तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा।